SBS रेडियो पर आप सभी को अनीता बरार का नमस्कार। आइए श्रोताओ, आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी के साथ में, जिन्हें हाल ही में फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहुत से ग्रंथों का हिंदी भाषा में पद्यात्मक पद्धति में अनुवाद किया है। इनमें शामिल हैं सामवेद, अथर्ववेद, गीता, सांख्य योग, पतंजलि योग और भी ना जाने कितने ग्रंथ। तो आइए मुलाकात करते हैं। मृदुल जी नमस्कार।
नमस्ते अनीता जी।
मृदुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया विश्व हिंदी सम्मेलन में। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आपने जो बधाई दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं संप्रेषित करती हूँ आपको, और ये भी बताती चलूँ कि मानती हूँ विश्व हिंदी सम्मान बहुत बड़ा सच में वास्तव में गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन यहाँ भी मैं इदन नमम का भाव लेकर रहती हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं भारतीय संस्कृति का सम्मान, और भारतीय संस्कृति तो स्वयं में प्रतिष्ठित सत्ता है, उसको सम्मानित या असम्मानित की बात नहीं है। बात यह कि लोग अब इस बहाने प्रसार जो भूल गए थे उसको याद दिलाने की बात है, उस प्रक्रिया के लिए संबंधित हूँ। तो वहाँ के अगर परिवेश की बात करूँ तो बिल्कुल सारा ही हिंदी में था, और उन लोगों का जो पीटी का स्वागत करने की जो ऊष्मा थी, उनका एक जैसे अंदर से उन्हें लग रहा था पता नहीं कौन कोई दिव्य लोक से उतर के आ रहा, हर किसी को इतने आनंदित और दिव्य भाव से अपनी परंपराओं के अनुसार जो भी उनके सिस्टम होते हैं उसमें गायन वृंद वाद्य वृंद और जो अपनी परिपाटी है वो सब निभा रहे थे, जो हम बड़े कौतूहल से सब देख रहे थे।
जी क्या बात है, ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये सम्मान संस्कृति के प्रति जैसे अर्पित कर दिया है। बिल्कुल संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति के ऊपर आपने जो काम किया है उसकी चर्चा भी करना आवश्यक है क्योंकि ये सम्मान उसी संदर्भ में मिला है। और आपने कितने सारे ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि ये सारे ग्रंथ उस भाषा में थे जो आम जनता तक पहुंच नहीं रहे थे, जिसको आपने पहुंचाने का जैसे बीड़ा उठाया और आपने वो काम कर भी दिया, और अभी भी ना जाने और कितना आप काम आगे करने वाली हैं। आपसे उसी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने एक अछूते से ग्रंथ पे काम किया है।
हाँ, आपने बहुत तथ्यपरक बात की जो मुझे आनंदित कर गई, क्योंकि यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे भारतीय दर्शन है, जो हमारे औपनिषदीय परंपरा है, जो हमारे वैदिक ऋषि जन्य ग्रंथ हैं, इनके प्रति समय के प्रवाह कह लीजिए, भौतिकता के आधिक्य कह लीजिए, कि धीरे धीरे रुचि हट गई, और उसी का परिणाम है कि सारे जगत में भौतिकता प्रधान मानसिकता हो गई, और बढ़ते भौतिकता तक भी सही था लेकिन नैतिकता भी खत्म हो गई। तो वो जो नैतिक प्रलय आज हम देख रहे हैं, तो उस प्रलय के कारण सृष्टि का कण कण कह रहा है कि आओ लौट चले ऋषियों की ओर, क्योंकि वही शाश्वती ज्ञान हमें चाहिए और जिसे हम बिसरा रहे हैं, तो वही कारण है जब जब बिसराया तब तब जीवन में अवसाद आया, वो प्रफुल्लता जीवन के प्रति जो उल्लास था वो खत्म होता चला गया, और मेरे कामों को मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कर रही हूँ या करने का मेरा कुछ लक्ष्य है, लेकिन जैसे एक ये कुछ पंक्ति मुझे अपनी लिखी याद आ रही कि कौन देता लेखने कर्मे समा, और कौन फिर जाता है हृदय तल में समा, और कौन कर देता है उन मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्तारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, कौन गह कर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। तो जगत से श्रृंखला तो
जी।
जो मेरे उन्मेष था आंतरिक आत्मा का, अंतर आत्मा का, वो मुझे कोई कभी खींचता था, और ये कब हुआ, हालांकि काव्य तो मेरे अंदर जन्म से था, क्योंकि मेरे पिता संस्कृत में कविताएं करते थे और वो डॉक्टर थे,
जी
और उन्होंने कोई हिंदी या इंग्लिश में डॉक्टरी नहीं पढ़ी, संस्कृत में पढ़ी थी। और मेरी माँ परम विदुषी, मैं 11-12 साल की थी तब मुझे ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ती नहीं थी, पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे घर 3 से 5 स्वाध्याय होता था, हम लोग आर्य समाज वैदिक परंपरा के रहे, तो बीज होते गए। और कुछ मेरे अपने प्रारब्ध थे, जिसे जब पतंजलि योग दर्शन का अनुवाद किया तो उसमें विभूति पाद में आता है, वो जो चरण है विभूति का, कि उसमें आपका भव प्रत्यय, जो मेरे पिछले जन्म के जो काम थे, वैचारिक ऊर्जा जो मैं सन्निहित करके गर्भ में आई थी, उनका पल्लवन हुआ है इस समय, ये कह सकती हूँ मैं।
क्या बात है। तो कुछ हमें बताइए, खास तौर से ये जो बहुत ही मुश्किल काम था उसके बारे में, सांख्य योग जी,
हाँ।
उसी की बात करना चाहूंगी। इसके लिए बहुत मुश्किलें हैं, तो किस तरह से आपने उन मुश्किलों को पार किया और कैसे इस मुकाम पर आप पहुंच सके?
जी, उसका यह है कि हमारे दर्शनों की परंपरा में अगर आते हैं भारतीय दर्शन में, तो हमारे 6 दर्शनों का ज्ञान है, 6 दर्शन है, और उसमें और गहराई से अगर आप पढ़े आप, तो ये दो दो के युग में है। जैसे मैंने पतंजलि, आप पहले बता दूं, युग में पतंजलि योग दर्शन और सांख्य योग दर्शन का युग में है, न्याय और वैशेषिक का युग में है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का युग में है। तो ये जन्य ग्रंथ हैं, लेकिन इन ऋषियों में भी सबसे अगर किसी को परमर्श की उपाधि दी गई है, क्योंकि ऋषियों के भी हमारे कैटेगराइजेशन होता है, राजर्षि अगर कोई बहुत अच्छा राज्य कर रहा है तो राजर्षि होता है, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि और परमर्षि होता है चौथा। तो महर्षि कपिल ने सांख्य योग दर्शन लिखा, उनको परमर्श की उपाधि थी। और यहाँ से भी इसकी इसके महात्म्य को आप समझ सकते हैं कि जब गीता में जाइए, दूसरे अध्याय में जाइए, चौथे में जाइए, तो सांख्य योग की बात होती है और महर्षि कपिल का भी नाम श्री कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में दृष्टांत में लिया है
जी।
और सांख्य योग दर्शन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि कैसे बनी है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के 24 तत्वों का संयोजन, उनका विस्तार और एक पुरुष, तो ये आत्मा और जो आपकी प्रकृति दिखाई देती है इसी से तो बना है, तो उसका ज्ञान है। ये क्लिष्ट तो है, बहुत क्लिष्ट है, और मैंने आपसे ये कहा ना अभी जो 5-6 पंक्तियों में बताया कि कैसे हो गया कि सो जो कछु अब फरत दिखाई, परम प्रभु की प्रभुताई, मैं कछु नय को ना नय कहूँ पीना, प्रतिपालक मोहे आपो है दीना, मैं बस केवल हाथ पसारा, कृपा सिंधु दे अपरंपारा।
क्या बात है।
तो मेरा कुछ जो है प्रारब्ध उद्भव हुआ, तो जो गृहस्थ में रहकर, ये भी नहीं कि मैं कहीं पढ़ाती लिखाती भी नहीं हूँ, और गृहस्थ में ही रहकर तक मैं रिसर्च किया और 18 महाग्रंथों का, जैसे सामवेद और ईश के नकट प्रश्न मुंडक मांड्यो कैत्रे तैत्री श्वेताशर भगवत गीता अष्टावक्र गीता पतंजलि योग दर्शन सांख्य योग दर्शन और शंकराचार्य पर बहुत काम किया, उस पर विवेक चूड़ामणि आदि, इस तरह 18 ग्रंथ हैं ये। दोहे चौपाई गीतिका हरि गीतिका अवधि ब्रिजभाषा और खड़ी बोली, इन सब ने किया है। और अनिता जी, आपके एक प्रश्न ना करने पर भी मुझे एक बात कहने का बहुत मन कर रहा है, जो मैं कहती हूँ कि जो हमारी जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उनमें जो आध्यात्मिक काव्य है वो क्लिष्टतम विधा है। उसमें आध्यात्मिक काव्य में क्या है कि एक तो नरजन्म ही दुर्लभ है, उससे दूसरा ज्ञान दुर्लभ है, और काव्य दुर्लभ है, आध्यात्मिक काव्य अत्यंत दुर्लभ है। उसमें क्या होता है, जो मैं अपनी अनुभूतियां हैं वो मैं श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, और कारण का भी कारण क्या होता है, वो होता है विचार। तो इसको गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है वो अर्जुन जब पूछते हैं वासुदेव, हे कृष्ण आप ये बताओ कि जीव को आप जब जन्म देते हैं आपका आधार क्या है, तो कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकर्ता हूँ। ईश्वर को अकर्ता कहा गया ना, वो कहाँ करता है, वो होता है बस। तो वो मैं करता कुछ नहीं हूँ। जीव जो अपनी वैचारिक संपदा लेकर आता है, उसके आधार पर ही जीव और योनि का लोहे और चुंबक की तरह आकर्षण हो जाता है। बस उसका जन्म उसी आधार पर होता है। इसलिए वैचारिक पवित्रता जीवन की सबसे श्रेष्ठतम और उत्कृष्टतम संपदा है, जिसे लोग भूल चुके हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा मति शराग्रहित्वैता संयाति वायुर्गंधा निवाच्यात्। इसको ब्रिज भाषा में देखिए कैसे करा है मैंने, जो गीता का अनुवाद किया था। यही तत्व गहन अति सूक्ष्म की, यही तत्व गहन अति सूक्ष्म की, जस वायु में गंध समावती है, तस देहिन, देहिन माने आत्मा, तस देहिन देह के भावन को नव देह में हूँ ले जावती है। तस देहिन आत्मा जो है वो नई देह में अपने विचारों को लेकर जाती है। तो उस आधार पर मैं आपसे कहती हूँ कि जब मैंने ऋषियों का अनुवाद किया इन ग्रंथों का, तो मेरे ऋषियों की वैचारिक शरीर में प्रवेश करना पड़ा, अर्थात उन चेतना के स्तर पर आना पड़ा। ये इतना क्लिष्ट काम था, और इसको अगर एक शब्द में कहूँ तो ये प्राणानुभूति के बिना संभव नहीं है, ईश्वरी कृपा के बिना संभव नहीं।
बिल्कुल मृदुल जी, आपके साथ बात करना और आपके विचारों को सुनना अपने आप में ही एक अनुभव होता है, और ये अनुभव मुझे कई बार आपसे प्राप्त हुआ है और हमारे श्रोताओं को भी प्राप्त हुआ है। अब आपके साथ बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने हमारे लिए इतना ये समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और कि इसी तरह से हमें ये अनुभव प्राप्त होता ही रहे, बस हमारी यही मनोकामना रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में ये जो हमारे ऋषिजन्य ग्रंथ है, ये सुप्रीम डॉक्ट्राइन ऑफ थियोसॉफिकल नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान के सबसे बड़े श्रेष्ठतम वो है, और मुझे अच्छा बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने किसी भी तरह मुझे इनके संपर्क और संसर्ग और वैचारिक चेतना में रखा, और आपने मेरे विचारों को प्रसारण का मंच दिया। आपको बहुत बहुत अनेकों साधुवाद और धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।